ايش عملت؟ قال हम लोगों ने भक्त विनोद ठाकुर की व्याख्या के अनुसार में देखा था यथार्थ में जीवालंब प्रत्यक्ष कृष्ण का ही है और जो चंचलता चपलता ये सब में कृष्ण का ही एकांतिक अधिकार है। किंतु इनका चौर और ये सब चीजें कहाँ? अपने धाम में अपने सेवक के प्रति, जैसे महाप्रभु सीधा से सीना झपटी करते थे और दूसरे अभक्त के चीजों पर उल्टी भी नहीं देते थे और सीधा खोला बेचा से लड़ाई झगड़ा जैसे तैसे करके उनके चीज को झपटते थे, लूटते थे, लेते थे जोर पूर्वक। बद्ध जीवों के लिए स्त्री, मध्य, मान संभोग प्रति बद्ध जीवन में सैद्धिक प्रवृत्ति, निसर्ग नैसर्गिक प्रवृत्ति माने क्या? नहीं, बदला हुआ स्वभाव जो असल स्वभाव के गद्दी पर बैठकर और अपने को शुद्ध परिचय देता है, स्वभाव परिचय देता है, किंतु है वो निसर्ग बदला हुआ स्वभाव। अभी इन सब चीजों के प्रति जीवों का आकर्षण है, किंतु होने पर भी उसे छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, उसे छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अनेक समय हम जानते हैं कि ये बुरा काम है, फिर भी हम हृदय दुर्बल होने के कारण वैसा करते हैं। हम समझते हैं कि जो काम हम छिप करके लुक करके करते हैं उसमें कुछ जरूर त्रुटी है। छिप करके जो भी काम करते हैं जरूर ना कुछ जरूर उसमें कुछ भी गड़बड़ी है, इसलिए इनको छोड़ने का प्रयत्न होना चाहिए। जिन लोगों ने छोड़ा है और छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं वो लोग वैष्णव हैं। जो लोग काम को चरम आश्रय करके चाहें सारा क्रम सब भालो है। जो लोग इनका प्रसार नहीं देना चाहते, आंतरिक रूप में छोड़ना चाहते हैं, सत्संग में भगवत भक्ति के बल पर इनको छोड़ सकते हैं, भक्ति हो जाएगी तो हम छोड़ देंगे ऐसा भी नहीं। यशोदा जी की जैसा परिश्रम और साथ साथ में कृष्ण की कृपा, ये दोनों एक साथ में होगी, अन्यथा हम भक्ति होगी तब हम छोड़ देंगे ये सब, ये भी ठीक नहीं। अपना तो जहां तक अधिकार है अपने अधिकार को हम काम में लाएंगे। किंतु कृष्ण दर्पण अर्थात संभोग চিরদিন চালাইতে থাকব। এরূপ জ্ঞাতের ইচ্ছা ভগবানের কৃপা হয় না। উদার পারায়ণ যে ব্যক্তি उनको दबाने की चेष्टा नहीं, छोड़ने की चेष्टा नहीं करता है, भगवान के नाम करेंगे, अवैध संग इत्यादि करेंगे, सन्यासी ब्रह्मचारी होकर के हम इसके विपरीत काम करेंगे, कुटुंब का भरण पोषण इत्यादि करेंगे, असत्संग करेंगे, अब फिर हरिनाम करेंगे शुद्ध हो जाएंगे, यह बात गलत, ऐसा नहीं है, ये भगवान की कृपा नहीं पा सकते। कारण चौर्य लंपट चंचलता प्रभृति अपराधिक कामदेव व्यतीत आर कहारो थाकते पारे ना, तार प्रतिद्वंदी के होते पारे ना, कहते हैं ये तो अपराधिक कृष्ण में ही ये सब संभव है, बद्ध जीवों के लिए नहीं, इसलिए इनको छोड़ना पड़ेगा। तात्पर्य ये है कि अद्वैत ज्ञान वस्तु निर्दोष है, उनमें जो देखा जाता है वो सब चीजें स्वाभाविक रूप में शुद्ध और निर्दोष रूप में है, कृष्ण में, किंतु जीवों में नहीं। क्योंकि कृष्ण निर्दोष के आकर हैं और विधि और निषेध के अतीत तार भालो मंदे प्रसंग आते हैं। कृष्ण में हम ये नहीं विचार करेंगे, या जो मुक्त महापुरुष हैं उनमें भी विचार नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या किया नहीं किया, ये हमारे अधिकार की बात नहीं है। कृष्ण क्यों छोटी छोटी गोपिकाओं का वस्त्र हरण किया, क्यों बंसी वादन के द्वारा रात में समस्त गोपियों को बुलाया, उनके पतियों से हटा करके अपने पास है, क्यों? उनका अधिकार है, इसलिए ये कनिष्ठ अधिकारी अथवा विमुख लोग विचार करते हैं, इसलिए भागवत को ही नहीं मानते, कहते भागवत में ऐसा क्यों लिखा है इसलिए नहीं मानेंगे। जिन लोगों का यह छह वेद शांत हो चुका है, वर्ष में जिन्होंने कर लिया है, वे धीर और धैर्यशाली हैं। धी धी माने बुद्धि मन, जिनका स्थिर हो चुका है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा है धीर कौन है, चिरेण धीर वेद उज्ज्वला बुद्धि। कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा हो चुकी है, शास्त्रों के वचनों को मानने वाले हैं, कृष्ण की कथा श्रवण करने से सारे हित रोग भी दूर हो जाएंगे, पहले भक्ति आएगी कृष्ण कथा के श्रवण करने से, इसके बाद में ये सब दूर हो जाएंगे, इस बात को मानने वाला स्वीकार करने वाला धीर व्यक्ति है जो ऐसा माने, और नहीं तो वो नास्तिक है, वो हरि कथा सुनने से भी उसको कुछ नहीं होगा। हम अपने प्रयत्न से पहले अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेंगे तब फिर हम अनर्थ दूर हो जाएगा तब भक्ति आएगी, उनको भक्ति नहीं होती, बल्कि भगवत कथा से हरिनाम करते करते करते, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते करते करते, अपने आप जितने परिमाण में भक्ति आएगी उतने परिमाण में अनर्थ दूर होंगे और इसी तरह से वो अनर्थों को दूर करें, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए निरंतर हरि कथा में लगे रहे, निरंतर हरि नाम करता रहे तो धीरे धीरे अनर्थ दूर हो सकता है। और अनर्थ दूर हो जाए, अनर्थ दूर हो जाए, लाख कहें चेष्टा करें, अनर्थ नहीं दूर होगा। अब धीर का अर्थ कर रहे हैं, धीर मैंने कवि, पंडित, सुधी, भक्त और साधु, धीर मैंने। तिनी समस्त पृथ्वी के शासन करते पाए तहां से क्षमता आज रूप गोस्वामी इत्यादि सनातन गोस्वामी ने शिष्य नहीं किया तभी पृथ्वी को शासन करने में समर्थ हैं, जगत इनका शिष्य है। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी शिष्य नहीं किया किंतु सारा जगत उनका शिष्य है, उनके परिकर भी ऐसे हैं। जीव गोस्वामी ने किसी को शिष्य नहीं किया, रूप गोस्वामी ने किया जीव गोस्वामी, किंतु हम जैसे शिष्य करते हैं वैसे नहीं हम लोग, जैसे दिन रात उनके साथ में रह करके सारे शास्त्रों का अध्ययन करके और परमार्थिक जितना जो रूप गोस्वामी ने महाप्रभु इत्यादि सबसे पाया था वो उनके हृदय में दिया, ये शिष्य। हम नहीं समझते हैं कि उनको उपनयन दिया कि नहीं, दीक्षा जैसा हम लोगों का आग जला करके, ये सब नहीं, ये तो हम लोगों जैसे मूर्ख जीवों के लिए ये है। जिन्हें लीला पुरुषोत्तम गोविंद व श्री गौर कृष्णेर नाम धाम कामेर सेवा निरत संरत तिनी रूप गोस्वामी प्रभु एवं तद अभिन्न तद अनुवृंद अनुगत वृंद श्री उपदेश स्वामी प्राण इच्छा हो सड़वे कृष्ण उन्मुख करिया तार सेवा विलास वर्धने जन्नो वहां दे नियोग वहां दे के कृष्ण अभिमुख करा प्रयोजन। जो लोग कृष्ण लीला पुरुषोत्तम श्री गोविंद जी अथवा गौर कृष्ण का नाम धाम और काम इनकी सेवा में नियुक्त हैं, उसमें रत हैं दिन रात, इसका अतिरिक्त जिनका और कोई काम नहीं है, वे स्वरूप गोस्वामी प्रभु और तद अभिन्न तद अनु वही रूपानुग है। उपेन्द्र स्वामी पान करते की इच्छा होने पर सर्वे इन सबको कृष्ण उन्मुख बना ले। कैसे? मन का वेग तो विषयों का चिंतन करना है, विषयों का चिंतन करना हटा करके कृष्ण और कृष्ण के परिकरों का चिंतन करें। वाक्य का वेग है इसको लगाए कृष्ण की कथा में लगा दे, दिन रात कृष्ण की कथाओं का वर्णन करता है, उनके भक्तों की कथाओं को बदल जाएगा विषय। उसी तरह से समस्त वेगों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करो। जो लोग ऐसा करते हैं वही गोस्वामी हैं या गुरु हैं, जो लोग नहीं कर पाते वो लोग गोस्वामी वंश में आने से या कहने मात्र से नहीं हो जाएंगे। इसलिए हम लोग मना करते हैं कि हम लोगों को गोस्वामी मत कोई कहे, गोस्वामी रूप गोस्वामी इत्यादि गोस्वामी है। उन गोस्वामियों के बाद में देखो जैसे उनकी परंपरा में केवल एक को गोस्वामी कहा, भक्ति विनोद ठाकुर को सप्तम गोस्वामी, इसलिए गोस्वामी शब्द जिसको तिसको नहीं लगा देना चाहिए। गो माने पृथ्वी, इंद्रिय श्रुति अथवा गो अर्थ है कृष्ण इंद्रिय सुख वांछा, तहां जहां आखे तिनी गोस्वामी, पृथ्वी इंद्रिय श्रुति अथवा गो शब्द का अर्थ कृष्ण की, कृष्ण को अच्छी लगने वाली सुख देने वाली जो वांछाएं हैं वो सब, ये जिनका है वही गोस्वामी, दूसरे गोस्वामी नहीं है। हम सारा सार विदेशी गणर कथा भीष्म देव जी बोलिया, ये पांडवों के निधन के पश्चात, महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर को शांति देने के लिए, पांचों पांडवों को शांति देने के लिए भीष्म देव के पास में कृष्ण पांचों पांडवों को ले गए द्रौपदी को ले गए। उस समय क्या एक पर्व है शांति पर्व, उस शांति पर्व में इस सब का विचार किया है। कुटीचक हंस बहुत दर्द हंस परमहंस, परमहंस गाने कथा जो सार और असार को अलग अलग करके उसको एक को ग्रहण कर लेता है सार को, वो है हंस। पहले हुआ सन्यासी चार प्रकार के, कौन कौन? कुटीचक माने क्या? एक जगह निर्जन स्थान में कुटी बनाकर अपने इंद्रियों को संयम करता हुआ भगवत चिंतन स्मरण कीर्तन इत्यादि करता है, वो कुटीचक है, कुटी निर्माण करता है। इसके बाद में और जरा उन्नत हो गया तो बहुदक्षक हो गया, बहुत जगहों का पानी, उदक माने पानी, विभिन्न जगहों का पानी ग्रहण करता है, अर्थात एक जगह में नहीं रहता, कुटी भी छोड़ दिया, ये कुटीचक। अब इसके बाद में हंस, सार और असार, संसार में सबसे सार क्या चीज है? भक्ति सार है और बाकी सब असार, इसको ग्रहण कर दिया। शरीर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इससे आत्मा को अलग कर लिया, चेतन और अचेतन पदार्थ, उसमें अचेतन को दूर करके चेतन को ग्रहण कर लिया। ये सब हंस के विचार है। दूध और पानी को अलग करके दूध को अलग ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है, ऐसे असार चीजों को छोड़ दे और सार चीज को ग्रहण कर। कैसे? दत्तात्रेय, दत्तात्रेय प्रत्येक चीज से सार ले रहे हैं, सबसे भी सार लिया, बेस्या से भी ले लिया, पृथ्वी से लिया, सूर्य से लिया, हवा से लिया, आकाश से लिया, 24 गुरु बनाए और 24 से अजगर से, सबसे उनका गुण ले लिया और असार को छोड़ दिया। अजगर का लिया किंतु अजगर का जो दुर्गुण है वो नहीं लिया। आकाश से क्या लिया? आकाश निर्लिप है, आकाश जैसा निर्लिप हो, उसमें मेघ आने से भी आकाश का कुछ नहीं है, कुछ भी उसे संबंध नहीं है। उसी प्रकार से विषयों के आने पर भी उससे उसका कोई संपर्क नहीं है, उसी तरह से पृथ्वी से लिया, पृथ्वी का गुण क्या है? सहनशीलता, और पेशाब करो, टट्टी करो, उसको गड्ढा करो, कुछ भी करो, वो कुछ नहीं बोलेगी। ऐसे दूसरा हमारा हजार अपकार करें, हम कुछ ना बोल करके भगवत भजन करते रहे, उनसे ये शिक्षा लिया। हवा, हवा दुर्गंध को भी लेती है, सुगंध को भी लेती है, फिर भी उसे कोई संबंध नहीं, उसे छोड़ देती है। ये सब जब ले कोई तो ये अभी हंस हुआ, इसके बाद में वो परमहंस होगा पीछे। अब हम लोग कितना ग्रहण करते हैं ये विचार है, किंतु ये जो परमहंस की अवस्था है, कितना होने पर भी उसे अर्जुन द्रौपदी श्रेष्ठ हैं, ये परमहंस हैं कि परमहंस के भी गुरु हैं? बहुत ऊपर चले जाते हैं, किंतु ये विचार सब ऐसा कोई ग्रहण करे तब तो ग्रहण करो। परमहंस को परमहंस बने कथा जीवात्मा प्रभावित धर्म कथा। परमहंसों की बात क्या है? जब जीव भगवत में नुख करके मायाकृत सूक्ष्म और लिंग शरीरों से आच्छादित होकर के देहात्म बुद्धि प्राप्त करके संसार में घूमता है, बड़े सौभाग्य से साधु संघ हो, और साधु संघों का नियमित हरि कथा श्रवण करके धीरे 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 इन सब चीजों को छोड़ करके यदि कोई शुद्ध होकर के भक्ति प्राप्त हो और स्थूल लिंग को छोड़ देने के बाद में उसका स्वरूप उसके अंदर से प्रकाशित हो जाता है। जैसे स्थूल शरीर में हाथ पैर नाक कान सुंदर सर्वांग संपूर्ण रूप से सुंदर शरीर को दिखलाते हैं, ऐसे जीवों का एक स्वरूप है। वही परमहंसों की स्थिति अभी आभास है, आभास अभी है किंतु उनसे संबंध नहीं रखते, अर्थात तो ये स्वरूप सिद्धि है। और इसके बाद में वस्तु सिद्धि में जीवों की शुद्ध दशा उपस्थित होती है। परमहंस गणेर कथा जीवात्मार स्वाभाविक धर्मेर कथा की करिया जीव सर्वोत्तम कृष्ण सेवा लाभ करके पारे तहरूप गोस्वामी प्रभु शिक्षा दिया जी। ये रूप गोस्वामी ने इसकी शिक्षा दी किस प्रकार से जीव ये परमहंसों की बात जीवात्माओं की शुद्ध जो भक्ति की बात है वो कब कैसे समझेगा, इसके लिए रूप गोस्वामी ने इन सब श्लोकों के द्वारा शिक्षा दिया। प्रथम श्लोक में गुरु यथार्थ साधु त्रिदंडी गोस्वामी इनका स्वरूप परिचय दिया गया है, ये साधु कैसा होना चाहिए ऐसा देना है। इसके बाद में ऋणीय जातीय छ दोष तत्परे श्लोक है धन जातीय छ गुणे निर्देश कर दिया है। क्या ऋण माने की निगेटिव जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए उसको निश्चित गति के पतले पास था छवे अत्याहार प्रयास इसको त्याग करने की बात है, इसलिए ये है वारी इनको छोड़ो। और धन जाती है माने उसको ग्रहण करना है उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन से इसके द्वारा भक्ति होगी। मार्ग पथ के जो पथिक है प्रभुपाद जी कह रहे हैं द्वितीय और तृतीय श्लोक के संबंध में प्रभुपाद जी कह रहे हैं परमार्थिक पथ के पथिक जो हैं उनके लिए पहले विधि और पीछे राग क्रम पंथा से लिखे हैं। छह दोष से मुक्ति होने छह दोषों से मुक्ति पहले लाभ करनी है, केवल ऋण परिशोध ही फल देना, केवल ऋण शोध करना है ऐसा मत सोचो। माने क्या केवल ऋण के लिए ही चिंता करके बस ऋण शोध कर देंगे और बस हो जाएगा, अर्थात निश्चित चीजें छोड़ देंगे और भक्ति हो जाएगी नहीं होगा। छह वर्गों का दूर करने से ही भक्ति हो जाएगी ऐसी बात नहीं है, ये पथ प्रशस्त हुआ है, इसके बिना भक्ति होगी नहीं शुद्ध, इसलिए इसको छोड़ना चाहिए। किंतु जब छोड़ दिया और भक्ति हो गई ऐसी बात नहीं। धन हुआ चाहिए, धन माने भक्ति होनी चाहिए, यदि धन नहीं होगा तो ऋण शोधन होगा, ऋण शोध कर सकते हैं, हमारे पास में कुछ ऋण है और धन नहीं है तो शोध कैसे करेंगे, कैसे देना होगा, कुछ तो आना चाहिए कहीं से, जब पैसा आएगा तब हम ऋण शोध करेंगे। ऐसे ही भक्ति जब आएगी तभी शोध होगा, अर्थात वो दूर होंगे, ये भी समझो। ओम विष्णु पासिल भक्ति विनोद ठाकुर एक दूसरी श्लोक है एक चीज शब्द लैया एक एक चीज शब्द लैया विशेष व्याख्या करिया प्रभुपाद जी का एक एक शब्द क्या अत्याहार प्रयास प्रबल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौलनच एक एका और बाको वेग मनस क्रोध वेग जीवा वेग उदर उपाय एक एक शब्द की उन्होंने व्याख्या की। अब हम लोग उसके तरफ में चलेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। भक्ति बाधक तड़दोष अत्याह पहले से एक एक का अत्याहार किसको कहते हैं अच्छी तरह से समझा करके लिखा है। स्वरूप गोस्वामी हैज रिटन अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह। भक्ति मनोज ठाकुर हैज एक्सप्लेन ईच वर्ड व्हाट इज अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह। We should know all these things and try to give up. अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लोलंत षड्विद भक्ति। इसके पहले वो टीका दिए हैं, इसके बाद में फिर भक्ति विनोद ठाकुर एक एक को अलग करके दिए हैं। हिंदी में भी हम लोग इसको प्रकाश करेंगे। इस श्लोक का गुण तात्पर्य विचार करना अत्यंत आवश्यक है। यदि जो भक्ति चाहते हैं, जो लोग भक्ति चाहते हैं, इसका जरूर अच्छी तरह से आलोचना करेंगे और नहीं केवल मठ में रहने से नहीं होगा। हरि कथा यदि सुन करके उस पर विचार करके उस पर अमल करेंगे तो काम होगा। गुरु जी बार बार कह रहे हैं, वैष्णव लोग कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं किंतु पालन नहीं करते हैं तो नहीं होगा। पालन करना चाहिए। एक आदमी रोज हरि कथा सुनता है किंतु किसी सेवा में प्रवृत्ति नहीं होता, प्रवृत्ति होती ही नहीं, तो क्या इसका मतलब? किसी भी काम में एक झाड़ू, ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू देने से लेकर रसोई वैष्णव सेवा, किसी भी काम में रुचि नहीं होती, न कोई सेवा करता है, कोई दायित्व नहीं गुरु सेवा के लिए। वैष्णव सेवा, गुरु की सेवा माने क्या? कृष्ण सेवा करने से करना ही, वैष्णव की सेवा करना ही गुरु जी की सेवा है। यदि कोई कुछ नहीं करता है, हरि कथा केवल सुनता है, तो इसका मतलब जो हरि कथा नहीं सुनता है तनिक भी, उनको पालन करना चाहिए, पालन करने की चेष्टा करना चाहिए। केवल बेस या लाल कपड़ा काम नहीं देगा। जो विशुद्ध भक्ति साधन में प्रवृत्त होंगे उन लोगों के लिए इस श्लोक का पालन करना आवश्यक है। विशुद्ध भक्ति क्या है? जो साधन करना चाहेंगे उनके लिए अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माजनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, इसका जो साधन करेंगे कैसे? अपने इंद्रियों के द्वारा जो कुछ करेंगे कृष्ण सेवा के लिए ही करेंगे, अनुकूल को ग्रहण करके प्रतिकूल भक्ति का प्रतिकूल वर्जन करके नित्य निरंतर अनुकूल रूप में कृष्ण प्रीति के लिए सब कुछ करेंगे, ये तो हुई भक्ति। अब इसके तीन विभाग हैं, साधन भाव और प्रेम। तो पहले मैं इंद्रियों के शरीर के इन इंद्रियों से जो साधन करते हैं कृति भाव कृति भवे साध भाव आश्र साधन विधान नित्य सिद्धस्य भावस्तम प्राकर्षण। जब इस उत्तम भक्ति प्राकृत इंद्रियों की वस्तु नहीं है, ये शुद्ध नाम भगवान की शुद्ध सेवा भक्ति प्राकृत इंद्रियों का कार्य नहीं है और हम लोगों को प्राकृत इंद्रियों के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, प्राकृत इंद्रियों के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसलिए जब अपने प्राकृत इंद्रियों से अप्राकृत भक्ति का अनुशीलन करने जाते हैं तो इसको कहते हैं साधन। अप्राकृत जीवा से भगवान का नाम होगा, अप्राकृत आत्मा के द्वारा भगवान की सेवा होगी, अपराजित कान से भगवान की कथा सुनी जाएगी, किंतु ये तो हमको है नहीं। इसलिए प्राकृत के द्वारा जब अप्राकृत को हम साधन करते हैं, है साधन नहीं वो शुद्ध, किंतु इसके बिना भी नहीं होगा, इसलिए उसको कहते हैं साधन। किस लिए? भाव को, भाव भक्ति को पाने के लिए इंद्रियों से उस उत्तम भक्ति का हम अनर्थग्रस्त अवस्था में जो अनुशीलन करते हैं उसको कहते हैं साधन। उन लोगों के लिए इस लोगों का पालन जरूर करना चाहिए। क्यों क्यों पालन करना चाहिए? भगवान ने जीवों के लिए एक बहुत ही दिव्य रत्न दिया है और वह है स्वतंत्रता। और भगवान ने प्रत्येक जीवों को यह स्वतंत्रता दे करके उनके लिए ये व्यवस्था की है कि मैं तुम्हारे स्वतंत्रता के ऊपर में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं ये बतला दूंगा कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, अब तुम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके जो अच्छा या बुरा समझो तुम करो, यदि अच्छा किया तो ठीक है, नहीं तो बुरा करेगा।